एक जमाना था एक बादशाह का जिसका नाम है खलीफा मंसूर। क्या नाम है? खलीफा बादशाह था। सुनना, उसके जमाने में रूम से एक जमात आ रही है। कहां से जमात आ रही है? लेकिन वो कौन सी जमात? ये हमारी जो दावत तबलीग वाली जमात नहीं, ये उन लोगों की जमात आ रही है जो खुदा को मानते ही नहीं है, जिनको अरबी जबान में मुलहिद कहते हैं। मुलहिद, तो मुलहिदों की जमात आ रही। यानी अच्छा, उस जमात के अंदर एक बूढ़ा आदमी है, 80 ईयर्स ओल्ड, कितना, और उसके बारे में उस जमाने में ये बात थी कि पूरी दुनिया में ये रूम का जो बूढ़ा आदमी है, इसके पास जो नॉलेज है, इसके पास जो एजुकेशन है, इसके पास जो साइंस है, इसके पास जो टेक्निक है, ऐसा अकल वाला कोई भी नहीं है। वो भी जमात में आ रहा है। बोलो, वो भी जमात में आ रहा है। और खुदा को मानते? ये पूरी जमात मानती नहीं। और इनका जो 80 साल का बूढ़ा, जो इनका सदर है, जो इनका सरदार है, वो भी मानता नहीं। अच्छा, खलीफा मंसूर को जब पता चला, खलीफा मंसूर बादशाह है, उसको पता चला कि रूम से जमात आ रही और उसमें इतना बड़ा आदमी आ रहा है जो इस वक्त दुनिया में उसका नॉलेज और एजुकेशन का कोई मुकाबला नहीं। वो अगर किसी से डिबेट करे तो उसका कोई मुकाबला नहीं। वो किसी से मुनाजरा करे तो उसका कोई मुकाबला नहीं। वो कोई टेक्नोलॉजी लाइन में बात करे तो उसका कोई मुकाबला नहीं। जब खलीफा मंसूर को मालूम हुआ कि इतना बड़ा तालीम वाला आ रहा, इतना बड़ा एजुकेशन वाला आ रहा, खलीफा मंसूर ने बाकायदा अपने शाही लोगों को भेजा कि उनको लेकर मेरे पास आओ। जब वो सब आ गए, भाई सब आ गए, खलीफा मंसूर भी तख्त के ऊपर बैठा है, सब स्टेज के ऊपर बैठे। वो जो बूढ़ा था ना, कितने साल का, और सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे। उसने क्या कहा मालूम? खलीफा मंसूर को कहा, बादशाह को कहा, मैं खुदा को नहीं मानता, अल्लाह को मानता। बोलो, अल्लाह को मानता नहीं। और उसने ये कहा, आपके यहां जितने उलमा है, सारे उलमा को और सारी जनता को और सारी पब्लिक को जमा करो, लेकिन उलमा को जमा करो, मैं उलमा में से कोई भी आलिम अगर खड़ा हो जाए, मेरे 3 सवाल का जवाब दे दे, मैं खुदा को मान लूंगा। लेकिन अगर वो न दे तो बादशाह, मेरा हुक्म है कि तुम तलवार लेके उसकी गर्दन उड़ा देना। अब बादशाह खलीफा मंसूर ने जमा कर दिया, भाई पूरी दरबार, पूरा मैदान गचागच जमा। और आगे की सफ में कौन है? बोलो ना, फर्स्ट लाइन में कौन है? उलमा। सेकेंड लाइन में कौन है? उलमा। इसलिए उस जमाने में उलमा, बहुत सारे उलमा, और पूरी पब्लिक जमा है, पूरी जनता जमा है। और खलीफा मंसूर ने कहा, यह 80 साल का बूढ़ा आदमी जो इल्म के मैदान का बादशाह है, जो तालीम के मैदान का बादशाह है, जो एजुकेशन और नॉलेज का बादशाह है, यह उलमा से 3 सवाल करेगा। अगर यह उलमा ने जवाब दे दिया तो यह खुदा को मानेगा, और अगर नहीं दिया तो तलवार होगी और उसकी गर्दन होगी, उसको कत्ल हो जाना है। ये किताबों में वाकया लिखा। अब मेरे दोस्तों बताओ, कोई आलिम खड़ा होगा? अरे भाई, कौन खड़ा होगा? मरने की बात है यहाँ तो। भाई जवाब दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो। लेकिन मेरे दोस्तों, इतने बड़े मजमे में 22 साल के एक जवान खड़े हुए। बोलो सुभान अल्लाह। 22 साल के एक जवान खड़े हुए, कौन मालूम है? हमारे इमाम, इमाम आजम, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। बोलो कौन? इमाम आजम, इमाम अबू हनीफा। खड़े हो, जब 22 साल का जवान खड़ा हुआ तो वो तो 80 साल का बूढ़ा था। वो कहने लगा, ये जवान काय को मरने का हुआ? अरे क्यों मौत को दावत देता? मैं जो सवाल पूछूंगा बहुत भारी सवाल है, तुम जवाब नहीं दोगे, तुम्हारी जवानी खत्म हो जाएगी। इमाम आजम ने इतने प्यार से फरमाया, अरे मौत के घाट उतारने वाला न तू है न ये बादशाह है, जिलाने वाला भी अल्लाह है, मारने वाला भी अल्लाह है। जब ये कहा तो उसको और गुस्सा है, इसलिए वो अल्लाह को मानता ही नहीं। अरे अल्लाह को मानता ही नहीं। सुनना, उसने कहा मैं 3 सवाल पूछूंगा। इमाम अबू हनीफा सामने आ गए, उम्र कितनी? और लिखा उस वक्त इमाम अबू हनीफा के घर में इतनी गरीबी थी कि कपड़े भी फटे हुए पहने थे। भाई कपड़े फटे हुए थे, मालूम नहीं खाना भी खाया होगा नहीं खाया होगा, लेकिन खड़े हो गए। कहा के पूछो, सवाल पूछो, जो पूछना पूछो। उसने अच्छा ये बताओ, उसके सवाल भारी भारी होंगे कि इजी होंगे? उसने जो सवाल पूछा ना, पहला सवाल क्या पूछा? उसने पहला सवाल पूछा कि खुदा से पहले कौन? खुदा से पहले कौन? उसका पहला सवाल, खुदा से पहले कौन? इसलिए तो उसने कहा कि तुम लोग कहते हो कि ऊपर वाले ने इंसानों को बनाया, इंसानों को बनाया, इंसानों से पहले अल्लाह ने जिन्नातों को बनाया, जिन्नातों से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया, और फरिश्तों से पहले अल्लाह ने 4 फरिश्तों को बनाया, कभी जिब्राइल को बनाया, इसराफिल को बनाया, इजराइल को बनाया, मीकाईल को बनाया, तो अल्लाह से पहले कौन? अल्लाह से पहले, यह पहला सवाल उसका, बहुत मुश्किल सवाल। दूसरा सवाल उसने कहा, तुम्हारा अल्लाह देखता कहाँ है? तुम्हारा अल्लाह देखता कहाँ है? अगर फ्रंट में देखता है तो पीछे कोई भी गुनाह करे कुछ मालूम नहीं होगा। अगर अल्लाह राइट में देखता है तो लेफ्ट में गुनाह करो, अल्लाह को, अल्लाह कोई तरफ तो देखता होगा, जिस तरफ अल्लाह देखता है वहां अल्लाह की नजर है, उसके अलावा कोई भी गुनाह करो अल्लाह को मालूम नहीं होगा। कितने सवाल हो गए? और तीसरा सवाल है कि तुम कहते हो कि अल्लाह है तो करता क्या है, अल्लाह करता? बस तीन सवाल हो गए। इमाम साहब ने क्या जवाब दिया? इमाम अबू हनीफा, उम्र कितनी थी? 22 इयर्स ओल्ड थे, जवान थे। इमाम अबू हनीफा ने इतना प्यारा जवाब दिया, बादशाह को कहा, बादशाह को कहा, ये बूढ़े ने कितने सवाल पूछे, ये ओल्ड मैन ने कितने सवाल पूछे? तीन। और कहां पे खड़े होकर पूछे? स्टेज पे खड़े होके, और बादशाह की कुर्सी के बाजू में बैठकर इसने सवाल पूछे। इमाम अबू हनीफा ने कहा, भले मेरी उम्र 22 साल की है, मैं तीनों सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अगर सवाल वाला स्टेज पे आके कुर्सी पे बैठ के सवाल पूछ सकता तो अब इसको कहो कि सामने खड़े हो जाए, मैं जवाब यहीं पर आके दूंगा। भाई ये जब सवाल पूछा तो इमाम साहब कहते मैं सामने खड़ा था, सबके सामने खड़ा था, अब मैं जवाब दूंगा, तो इसको बोलो ये तो बुड्ढे को बहुत भारी पड़ा भाई, इंसल्ट हो जावे ना, इंसल्ट जो स्टेज पे बैठा है जिसके लिए पूरा मजमा जमा है उसको, तो कहा नहीं नहीं मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो इमाम साहब ने कहा मैं जवाब भी नहीं दूंगा, अगर आपको जवाब चाहिए, सवाल पूछने का हक है कि कुर्सी पे बैठ के सवाल पूछो, तो जवाब देने का और भी ज्यादा हक है कि कुर्सी पे बैठ के जवाब दो। जब तुम सवाल पूछे मैं सामने खड़ा था, अब मैं सवाल जवाब दूंगा, तुम मेरे खैर। सबने बूढ़े को कहा कि अब तो इज्जत का सवाल है, चलो। वो बेचारा बूढ़ा धीरे धीरे उतरा, कहाँ खड़ा हो गया। जब सामने खड़ा हो गया तो इमाम साहब ने पूछा, इतने आसानी से पूछा, देखो अल्लाह वालों को अल्लाह क्या तौफीक देता है, इतने आसानी से पूछा, तूने कहा खुदा से पहले कौन? तो इमाम साहब ने क्या कहा वो बूढ़े से, कहा तेरे को ये नंबर्स गिनने आते, 1 2 3 4 5, ये गिनने आता तुझे? अरे उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे किसी बड़े को बोलो चल 1 2 3 4, कहेगा मौलाना पागल हो गया क्या, मैं कोई छोटा बच्चा? वो बड़ा गुस्से हुआ। इमाम साहब ने कहा गुस्से नहीं, तुम्हें आता है? तो कहा आता है। कहा गिनो। उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 पर पहुंचा इमाम साहब ने कहा बस, अब कहा कि पीछे से गिनना शुरू कर, अब तू आगे से गिना ना 1 2 3, पीछे से गिनना। तो उसने गिनना शुरू कर दिया भाई, वो तो बहुत जबरदस्त था, उसने गिनना शुरू कर दिया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इमाम साहब ने कहा 1 के ऊपर? इमाम साहब ने कहा 1 के ऊपर? तो कहा कुछ भी नहीं। तो इमाम साहब ने कहा ओ, तेरी मामूली गिनती में 1 के ऊपर कोई नहीं, तो हमारा अल्लाह भी 1, उसके ऊपर भी कोई नहीं। अरे भाई सही है ना, कितना अच्छा जवाब दिया। कहा तेरी मामूली गिनती, जो बच्चे रोजाना गिनती करते हैं, तुम 1 पे आ गए, वहां के ब्रेक लग गया, तुम कहते हो 1 के ऊपर कोई नहीं, तो अवर अल्लाह इज 1, अल्लाह के ऊपर भी। अब बोलो सही बात है कि नहीं बात है? अरे बोलो ना, हमारा अल्लाह 1 है और 1 के ऊपर। अरे बोलो ना, हमारा अल्लाह, साथ में पढ़ो ना। इमाम साहब ने पढ़कर सुनाया कि हमारे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते मैं 1 हूं और तुम्हारी गिनती में 1 के ऊपर कोई नहीं, तो हमारे अल्लाह भी 1 है, अल्लाह के ऊपर भी कोई नहीं। साथ में पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक सवाल का जवाब हो गया। बताओ थोड़ी देर के लिए सोचो, वो आदमी का मुंह कैसा हो गया होगा? वो 80 साल, उसने क्या कहा मालूम? गुस्से में कहा चलो एक जवाब हो गया, दूसरा जवाब बताओ, तुम्हारा अल्लाह देखता कहाँ है, तुम्हारा अल्लाह देखता? इमाम साहब ने बहुत अच्छा इजाजत मांगी, बादशाह से इजाजत मांगी कि काम करो, ये सब लाइट बंद कर दो। उस जमाने में वो बड़े बड़े चिराग जलते थे बादशाह के दरबार में, जिसको उर्दू में कुमकुमा कहते हैं, ऐसे कुमकुमे जलते थे, सब ऑफ कर दो। लेकिन इमाम साहब ने कहा ऑफ करो और एक छोटी सी मोमबत्ती लेकर आओ, मोमबत्ती समझो ना कैंडल, छोटी सी मोमबत्ती लेकर आओ। चलो इमाम साहब ने जब ऑर्डर दिया, बादशाह का ऑर्डर हुआ, चलो बंद कर दो लाइट, सब लाइट बंद हो गई। बूढ़ा पहले तो डरा होगा कि लाइट कैसे बंद कराता है, लाइट बंद हो गई, एक कैंडल मंगाया और कहा कि इसको जलाओ जलाओ इसको जलाओ। जैसे वो कैंडल को जलाया, इमाम साहब ने बूढ़े को बुलाया और कहा कि ये कैंडल की रोशनी कहाँ जा रही है? ये एक ही रोशनी है, ये फ्रंट में जा रही है कि बैक में जा रही है, राइट में जा रही है कि लेफ्ट में जा रही है? वो बूढ़े ने गुस्से में कहा अरे कैंडल है, रोशनी है, चारों तरफ उजाला है भाई, चारों तरफ उजाला, स्टेज के इधर भी उजाला है, स्टेज के उधर भी उजाला है, सामने वाला भी दिखता, पीछे वाला भी दिखता। ओ इमाम साहब ने फरमाया जब वो चार आने की मोमबत्ती, चार आने की कैंडल, उसका उजाला चारों तरफ होगा, तो मेरा खुदा तो नूर ही नूर है, उसका उजाला सातों आसमानों में भी होगा और सातों जमीनों में भी होगा। और सही, अल्लाह तो नूर ही नूर है। अरे बोलो अल्लाह तो। इमाम साहब ने फरमाया तेरे ये सवाल का जवाब भी कुरान में है,
तेरे ये सवाल का जवाब भी कुरान में, कुरान में पारा नंबर 18 बोलो पारा नंबर, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु नूरु समावाती वल अर्ज, अल्लाहु नूरु समावाती वल अर्ज, आखिर में अल्लाह फरमाते नूरु नाला नूर यहदिल्लाहु लिनूरि मन यशा। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अगर मामूली मोमबत्ती उसकी रोशनी चारों तरफ चली जाए तो हमारा खुदा तो नूर ही नूर,
अल्लाह तो नूर ही नूर। तो क्या अब कितने सवाल रह गए उसके? एक ही रह गया। बड़े गुस्से में उसने कहा चलो सब बातें हो गई, अल्लाह करता क्या है अल्लाह? इमाम साहब ने कहा वो जवाब तो तूने भी देख लिया, अल्लाह क्या करता है वो तो तेरे को भी मालूम है। कहा नहीं मेरे को नहीं मालूम, अल्लाह करता क्या है? कहा अल्लाह यही करता है तेरे जैसे पढ़े लिखे को खड़ा करता है और मेरे जैसे गरीब को कुर्सी पर बिठाता है। कहा अल्लाह यही करता है, अल्लाह यही करता कि तू इतना पढ़ा लिख कर आया था तुझे यहां पर खड़ा कर दिया और मैं 22 साल का गरीब, मेरे कपड़े फटे, मेरे पास खाने को नहीं, लेकिन अल्लाह ने कुर्सी पर बिठाया, ये अल्लाह का काम है। जब इज्जत देने पर आए तो कोई जलील नहीं कर सकता और जब तेरे जैसे कोई जलील करने पर आए तो दुनिया की कोई ताकत इज्जत नहीं दे सकती। और कहा ये जवाब भी कुरान में, ये जवाब भी कुरान में, पारा नंबर 3 मेरे साथ में पढ़ना। अल्लाह ने फरमाया वो तो दिलो मन तशा, इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह ही। जलील करने वाला कौन? अल्लाह ही। तो मेरे दोस्तों ये सारी बातें सुनकर अब अपने दिल में यकीन को मजबूत बना लो, करने धरने वाला कौन? बोलो ना, बोलो ना, करने धरने वाला। मैंने कहा ना तीन काम हमारी जिंदगी में आ जाए, मौत के वक्त कलमा मिलेगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा, जिसमें सबसे पहला काम है ला इलाहा। लेकिन मेरे दोस्तों उतारो, दिल में उतारो, ये बताओ कौन रोजाना 2 रकात पढ़ेगा? पढ़ेंगे क्यों? पढ़ने का 2 रकात काय को पढ़ने का? अल्लाह मैंने किसके हवाले कर दिया? तेरे हवाले। पढ़ेंगे 2 रकात? पढ़ेंगे सब, पढ़ेंगे हाथ ऊपर करो ना जरा तो मालूम पड़े कौन कौन पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। हाँ देखा अली भाई, नफल के लिए हाथ ऊपर उठाए, फर्ज कौन पढ़ेगा? फजर कौन पढ़ेगा? ये अजीब बात है, हमारे इंडिया में भी जब मैंने ये बात रखी ना सबने कहा बोला ना हम 2 रकात पढ़ेंगे रोजाना पढ़ेंगे। मैंने कहा कब पढ़ेगा? आज जब आंख खुली 8 बजे 9 बजे 10 बजे तो हम 2 रकात नफल पढ़ेंगे। मैंने कहा तेरे जैसा बेवकूफ कौन होगा जो नफल के लिए हाथ उठाया? फजर कौन? तेरा अब्बा पढ़ेगा? फजर तो फर्ज है। एक बात समझ लो, ये हमारे यहां भी जो बड़ी बड़ी रात होगी ना तो शबे बरात शबे कदर जिसको देखो मस्जिद में अल्लाह अकबर, हाँ, और सुबह बोलेगा मैं 30 रकात नफल पढ़ा। तो मैं कहता हूँ नफल पढ़ा तूने, हाँ, और फजर की फर्ज कौन पढ़ेगा? आज फजर में आया कल, बहुत सारे बाहर बैठे यहाँ पे फजर नहीं पढ़ते, फजर नहीं। उनको पूछो कब पढ़ा? कहा 15 दिन पहले पढ़ा था, ईद के दिन पढ़ा था, उसके बाद रमजान में बराबर फजर पढ़ता क्योंकि सहरी खाने का होता है, तहज्जुद भी पढ़ेगा फजर भी पढ़ेगा सहरी खाने के लिए सब करेगा। और जहां ईद के दिन फजर पढ़ा उसके बाद में वो रमजान में क्या होता मालूम है? शैतान है ना शैतान, उसको वहां अल्लाह दरिया में फेंक देता, अरे शैतान को अल्लाह जहन्नम में फेंक देता। ये जैसा रमजान का चांद नजर आएगा ना ईद का चांद नजर आएगा वो शैतान आता और हमको कहता ओ माई ब्रदर कहां था तू, हाँ यू आर टोटली चेंज, क्या हो गया? तो कहते फिक्र मत कर ये तो रमजान में था ना इसलिए, बाकी हम तो भाई भाई। सही में मेरे दोस्तों कितने ऐसे जो वो ईद के दिन फजर पढ़ा उसके बाद से आज तक फजर नहीं पढ़ा। एक बात याद रखो, नफल के लिए हाथ उठाते हो कि हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे आप, इसलिए हमारी जरूरत पूरी होगी पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों एक कायदा याद रखो, नफल उसी वक्त कबूल होता है जब फजर पहले जन्नत का दरवाजा खुलता है। नफल है ना नफल, उसको फर्ज नमाज पुश करती है तब जाके नफल नमाज आगे बढ़ जाती है। लेकिन अब अच्छा दुनिया के मामले में हमको मालूम है कि फर्ज पहले होना चाहिए नफल। जैसे देखो ये कुर्ता मैंने पहना, आप लोगों ने शर्ट पहना, ये नफल है, ये क्या है? और ये जो पैजामा हमने पहना वो, अरे बोलो ना भाई इतना तो समझ, वो फर्ज है। पैजामा जो पहना, पैंट जो आपने पहना, जीन्स जो आपने पहनी है वो क्या है? फर्ज है। इसलिए 70 का छुपाना फर्ज है और ये जो पहना हो नफल है। अब सच बताओ मेरे दोस्तों, अगर कोई सिर्फ कुर्ता या सिर्फ टी शर्ट या शर्ट पहन के बाहर आ जावे और बोले ओए ये कोई मामूली नहीं है, बहुत बहुत महंगा, 2000 रैंड इसके एक A4 वन शर्ट वन टी शर्ट मैंने 5000 रैंड मैंने दिए वो पहन कर रहा है बताओ कोई मुलाकात करेगा अगर किसी से मुलाकात करेगा सलाम वालेकुम वो भागेगा क्या क्या क्या, क्या, क्या? बल्कि कुछ लोग तो क्या बोलेंगे मौलाना आया तेरे को जिन्नत भड़क गया तेरे को कुछ हो गया जा पागल तो दुनिया के मामले में समझ में आता है कि फर्ज पहले होना चाहिए नफल बाद में हाँ और ये दीन के मामले में क्यों नहीं समझ में आता आ जाओ मेरे दोस्तों एक बात पे तीन काम के लिए तैयार हो जाते हो भाई अरे हाँ बोलो हाँ तैयार हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ भाई तीन काम के लिए तैयार पहला काम क्या करना बोलो पहला काम क्या करना ला इलाहा हाँ सब सब लोग बिल्कुल दिलो जान से कहो करने धरने वाला कौन था साथ में बोलो ना साथ में बोलो हम सबका पैदा करने वाला कौन बोलो बोलो हम सबका पैदा करने वाला कौन अल्लाह ही हमें खिलाने पिलाने वाला कौन अल्लाह ही हमें कपड़ा पहनाने वाला कौन अल्लाह ही ये फर्श और अर्श का बनाने वाला कौन अल्लाह ही ये आसमानों जमीन का बनाने वाला कौन अल्लाह ही काश मेरे दोस्तों हमारी तौहीद तो ऐसी मजबूत होनी चाहिए कि अगर हम समंदर को देखें ना आज मैं स्विंगो बीच में था मैं समंदर को देखा मैंने हमारे हाजी मूसा पटेल को मैंने कहा ये क्या खुदा की कुदरत है कोई इसको देखकर ही तौहीद मजबूत कर ले हुए अरे सही है ना समंदर का पानी कितने तूफान से आता आपने देखा कि नहीं देखा कितने तूफान से आता है पूछो ना अल्लाह से पूछो इतने तूफान से आया ये किनारे पे आके रुक क्यों गया ये किनारे पे आके रुक क्यों गया और रुकने के बाद पानी कहां गया वो पीछे गया कि जमीन के अंदर गया अल्लाह कहता मेरे बंदे ये मेरी कुदरत है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता भाई कहा कि नहीं अल्लाह ने कहा कि नहीं मेरे साथ में पढ़ो ना खल्ला ने फरमाया अफला यनजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्ज कैफ सुतिहत अल्लाह फरमाते ये सब मेरी कुदरत है और मेरी कुदरत का कोई मुकाबला सब लोग चलो बताओ कौन कौन तैयार है ये बात पर पक्का तैयार दो रकात नफल भी पड़ेगा और फर्ज भी पड़ेगा पड़ेगा इंशाअल्लाह और इससे अपने कलमे को मजबूत करेगा ला इलाहा आज से बता दो भाई करने धरने वाला कौन किससे मांगोगे नहीं नहीं साथ में बोलो किससे मांगोगे इधर उधर किसी से मांगना इधर उधर किसी को प्रॉब्लम सुनाना काय को मैंने देखा लोग अपना प्रॉब्लम दूसरे को बताते काय को बताता भाई एक बूढ़ा आदमी नमाज पढ़ के निकलेगा भाई बूढ़ों से माफी चाहता हूँ बहुत माफी लेकिन देखा मैंने इंडिया में देखा अफ्रीका में नहीं एक बूढ़ा निकलेगा ना यूं लकड़ी लेके ये जोहर की नमाज पढ़ के वो दूसरा बूढ़ा बाहर से निकला अब दो भाई केम छो ठीक है सलाम वालेकुम केवे घर में केव छे तो वो बूढ़ा है ना पूछा नहीं ना अब वो मेरा बेटा कंट्रोल के बाहर हो गया वो शादी कराया जब से बाइड़ी का हो गया बस बीवी 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 हम बूढ़े को कोई नहीं पूछता वो सामने वाला बूढ़ा क्या कहेगा मारा घर में भी एवं मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर एक सवाल पूछना चाहता हूँ हालांकि दोनों बड़े बूढ़े हैं इनसे सवाल पूछना मुझे मालूम है हाँ तेरा बेटा नहीं पूछता इसका बेटा भी नहीं पूछता लेकिन दो का आपस में बोलने से क्या फायदा हुआ क्या फायदा हुआ क्या ये बूढ़ा तेरे घर में आके सबको सुधारेगा तू जब बाप होके बेटे को नहीं सुधारा तो दूसरा बूढ़ा कहां से आएगा बोलो क्या क्या फायदा हुआ फायदा क्या हुआ नुकसान इतना बड़ा हुआ कि हदीस में लिखा है गीबत करना बैक बाइटिंग गीबत करना ये जीना से भी बदतर है और तूने मस्जिद के दरवाजे पर अपने सगे बेटे की गीबत करके जोहर की नमाज को वापस रिटर्न कर दिया अल्लाह भी कहेगा ये कौन सी नमाज पढ़ के तू बाहर निकला क्यों इससे अच्छा वो बूढ़ा आदमी क्या करता भाई केम छे अल्हम्दुलिल्लाह भाई घर में के अल्हम्दुलिल्लाह और उसको जब याद आया कि मेरा बेटा कंट्रोल के बाहर हो गया वो बस बीवी बीवी तो वो क्या करता वहां से वापस आता वजू करता दो रकात नमाज पढ़ के अल्लाह को कहता अल्लाह मेरा बेटा ऐसा हो गया अल्लाह मैं किसी को क्या बोलूं अल्लाह तेरे से बोलो मेरे दोस्तों मैं कसम खाकर कहता खुदा के दरबार में देर होगी मगर अंधेर नहीं होगा वो एक दिन आएगा बेटे को तेरा फरमा बरदार बना देगा वो तेरे सामने माफी मांगने वाला बना देगा इसलिए कि अल्लाह कहता मुझसे मांगा होता तूने लोगों से कहा जा मैंने तुझे लोगों के हवाले कर दिया जिंदगी भर परेशान रहेगा बेटा ना फरमान बेटी ना फरमान बीवी ना फरमान क्यों इसलिए कि तू लोगों से कंप्लेन करता अल्लाह से क्यों नहीं कहता मेरे दोस्तों चलो आज इरादा करते हो तो मैं आगे बात पर जाऊं कि थक गए आप लोग थके नहीं मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं कि मौलाना तू थका कि नहीं थका लेकिन मैं इसलिए आपको पूछता हूँ आप लोग नहीं थके ना नहीं।, नहीं बिल्कुल नहीं।, नहीं देर हो जाएगी तो बीवी कुछ बोलेगी तो नहीं ऐसा होता है ना प्रॉब्लम हाफिज कासिम सब होता है कि नहीं होता हाँ तैयार है, मतलब बीवी को बोल के आए कि वो कारी अहमद अली का बयान बहुत लंबा बयान करता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ अली भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो गया इंडिया में। क्या हुआ मालूम है, इंडिया में बयान शुरू होता है रात को 11 बजे। कितने बजे? एक मरतबा मालूम नहीं, मैं बयान करने बैठा अली भाई, मेरे को भी पता नहीं चला, 12, 1, 2, 2:30 बज गए। दो और अब बयान पूरा हुआ, अब लोग बोलते गए करते जाओ, मैं बयान करता गया। 2:30 बजे जब मैं गया ना, तो मैं मेरी गाड़ी में बैठा तो मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया, मेरे दोस्त का फ़ोन आया और मुझे कहता है कारी साहब एकदम घबराया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा कारी साहब, मैंने कहा बोल क्या हुआ? कहा वो दरवाज़ा नहीं खुलती दरवाज़ा। तो मैंने कहा अच्छा तेरी बी, अब मेरे को ऐसा कि भाई मेरे को तो सूरत में सब लोग पहचानते हैं। मैंने कहा तेरी बीवी दरवाजा नहीं खोलती, बोल कारी अहमद अली का बयान था। कहा वो तो बोला। मैंने कहा क्या जवाब दी? कहा कारी अहमद अली के बीवी बच्चे के वो भी मर गए, इतनी रात को कोई बयान करता है? अब सुनना ये पूरा वाकया सुनना। मैंने सोचा कि तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खैर मैं तो घर पे आ गया, मालूम नहीं उसका दरवाजा खुला नहीं खुला, मेरे को नहीं मालूम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का दरवाजा खुल गया। खैर मैं घर पे आ गया, दूसरे दिन मैंने सूरत के जिम्मेदारों को जमा किया। मैंने कहा देखो ऐसा ऐसा कल प्रॉब्लम हुआ, ये तो एक का हुआ, मालूम नहीं कितनों का प्रॉब्लम होता होगा। तो हमारे सूरत के जिम्मेदारों ने कहा कारी साहब फिक्र मत करो, अब से आपका बयान होगा तो हम लेडीज़ को भी एक तरफ रखेंगे, भाई जेंट्स एक तरफ, तो एक तरफ हम इंतजाम करेंगे औरतों का, कोई टेंशन ही नहीं इसके, जब ये घर जाएगा तो वो भी घर जाएगी। मैंने कहा ठीक है चलो, अब ऐसा इंतजाम है हमारे सूरत में, ऐसा इंतजाम औरतों को एक तरफ, मर्दों को एक तरफ, पर्दे का बीच में इंतजाम। 6 महीना हुआ होगा, कितने 6 महीना, एक दिन मैं बयान कर रहा था, सब लोग बैठे थे, एक औरत का लेटर आया, उसमें लिखा था मौलाना ये मेरे हस्बैंड का नाम है, वो जहां भी बैठा हो उसको बोलो अभी घर पे आ जावे। सुनना, अब मैं क्या समझा घर में एक्सीडेंट, घर में कोई वाकया, मैंने जल्दी से बयान रोक दिया। हालांकि बयान का रोकना बहुत मुश्किल काम है, बीच में से बिल्कुल मैंने बयान रोक दिया और मैंने कहा भाई ये नाम का आदमी कौन है? तो ये ऐसे करीब में बैठा था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी उठो, घर पे जाओ, घर पे जाओ, तुम्हारे घर का कोई मामला, जाओ। वो बेचारा यहां से उठा, यहां गया होगा ना, वो पर्दे में से आवाज दे दिए बैठ जा, तो बैठ गया। यानी क्या फरमा बरदारी, उसने कहा उठ जा तो उठ गया, और वहां जाके मैंने देखा वहां बैठ गया। तो मैंने कहा ये क्यों मजाक करते हो, ये डिस्टर्ब क्यों करते हो भाई जब उठाना? तो वहां से औरत क्या कहती है, मौलाना डिस्टर्ब नहीं किया, वो तो मैं देखना चाहती थी, मेरा हस्बैंड मस्जिद में बैठा है कि बयान का नाम लेके कहीं और जाके बैठा है। अब हम लोग धंधे ऐसे करते तो वो शक करती है, मतलब आपको तो ऐसा कोई, मैंने इतना बड़ा वाक्य इसलिए सुनाया, यहां कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं ना, मैं बोलू ना बाद में कोई फोन वोन तो नहीं आएगा ना। हाँ, तो एक बात पक्की हो गई, बोलो ला इलाहा। चलो दूसरी बात, कौन सी चीज हमारी जिंदगी में हो कि हमको मौत के वक्त कलमा मिले? सुनना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यार से फरमाया कलमा चाहिए, ईमान चाहिए। हमारे नबी ने एक और बात बताई, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, बुखारी की रिवायत। وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة। दो हदीसें मैंने आपको बताई, हमारे नबी ने कितनी प्यारी बात बताई। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे मोहब्बत कर ले, बोलो मुझसे मोहब्बत कर ले, अल्लाह तेरा ईमान मुकम्मल कर देगा, अल्लाह मौत के वक्त तुझे कलमा नसीब कर देगा, अल्लाह तुझे जन्नत नसीब कर देगा। बल्कि एक हदीस में क्या फरमाया, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे कयामत तक आने वाला उम्मती मुझसे मोहब्बत कर ले। हमारे नबी फरमाते फिक्र मत करना, मुझसे मोहब्बत कर ले, फिक्र मत करना, मैं बेवफाई नहीं करूंगा, जब मैं जन्नत में जाऊंगा तुझे भी साथ में लेकर जाऊंगा। भाई कलमा भी, जन्नत भी, और हुजूर के साथ जन्नत में जाना, लेकिन उसके लिए काम ये करना कि हुजूर पाक से मोहब्बत करना। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो मोहब्बत किससे करेंगे, बोलो हमारे आका, अरे करेंगे ना। और सही बात मेरे दोस्तों, हमारे नबी से बढ़ के कोई नबी है? अरे बोलो ना कोई नबी है? आप अगर सुभान अल्लाह बोलो तो मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, सुनेंगे आप लोग, ये दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम हाँ मेरे दोस्तों, ये हमारे अकाबिरीन जो है ना, ये अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत करते थे, हम किताबें पढ़ते नहीं है, ये देवबंद के बानी मबानी, दारुल उलूम देवबंद के बानी मबानी हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, बोलो हजरत मौलाना कासिम, उनको किसी ने पूछा कि मोहम्मद की तारीफ क्या है, बोलो सल्लल्लाहु, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोहम्मद अवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओहो माना कासिम नानोतवी ने जो बताया है, अल्लाह की कसम जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि मोहब्बत इसका नाम है। अरे बोलो मोहब्बत क्या फरमाया। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि हमारे नबी की तारीफ क्या है, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया हमारा नबी वो नबी अगर मुस्कुरा दे तो जन्नत की कलियां खिलना शुरू हो जाए, हमारा नबी मुस्कुरा दे तो जन्नत के फूल बरसने लगे, हमारा नबी नाराज हो जाए जहन्नम के शोले भड़कने लगे, हमारा नबी हां कह दे अल्लाह हलाल कर दे, हमारा नबी ना कह दे अल्लाह हराम कर दे, हमारा नबी वो नबी जब भी कुछ बोले जबान नबी की होगी कलाम तो अल्लाह का होगा। अभी बात खत्म नहीं हुई, मौलाना कासिम नानोतवी आगे फरमाते, आप मेरा साथ दोगे ना इंशाल्लाह। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी फरमाते हमारा नबी वो नबी, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो हमारा नबी वो नबी, बोलो सुभान अल्लाह, हमारा नबी वो नबी उंगली उठाए तो चांद के दो टुकड़े हो जाए, बोलो बोलो उंगली उठाए तो चांद के दो टुकड़े हो जाए, हमारा नबी वो नबी यूं उंगली बताए, देखो यूं यूं उंगली मुबारक से इशारा करे इशारा करे इशारा करे। अरे मेरे दोस्तों हमारे नबी उंगली से इशारा करे, हदीस पाक में लिखा डूबा हुआ सूरज भी आपके इशारे पर वापस आ जाए। अरे हमारा नबी वो नबी, मौलाना कासिम नानोतवी फरमाते हमारा नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले मक्का के बयाबान में चले, हर पत्थर हर दरख्त आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए, पत्थर भी कहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दरख्त भी कहे अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अरे हमारा नबी वो नबी, बोलो साथ में बोलो हमारा नबी, मौलाना कासिम नानोतवी फरमाते हमारा नबी वो नबी जब उम्र है 9 साल, उम्र कितनी 9 साल, और मक्के में पानी नहीं, बोलो मक्के में पानी नहीं, आसमान से बारिश नहीं, सारा मक्का परेशान, मक्का के रईस परेशान, मक्का के चौधरी परेशान, मक्का के बच्चे बच्चे परेशान, हमारे नबी की उम्र 9 साल, सारे मक्का वालों को परेशान देखा, हमारे नबी आगे बढ़े कहा मक्का वालों परेशान न होना, मैं चेहरा उठाता जाऊंगा खुदा पानी बरसाता जाएगा। हमारे आका ने यूं चेहरा उठाया, कैसे ये चेहरा था ना चेहरा यूं यूं, हमारे नबी ने यूं चेहरा उठाया थोड़ा सा, बोलो कैसा, थोड़ा सा चेहरा उठाया, रिमझिम पानी बरसने लगा, फिर चेहरा उठाया और पानी बरसने लगा, तीसरी मर्तबा चेहरा उठाया पूरा मक्का पानी से सैराब हो गया, पूरा मक्का पानी से सैराब हो गया, और अल्लाह की आवाज आई मेरे महबूब, अल्लाह की आवाज आई मेरे महबूब। नबी की उम्र कितनी थी 9 साल, अभी नबूवत मिली, लेकिन अल्लाह की आवाज आई अभी भी मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया, उंगली भी बता देता मैं पानी बरसा देता। मेरे दोस्तों ये हमारे नबी की शान है, इसलिए मोहब्बत तो उन्हीं से करना चाहिए ना, अरे बोलो ना, लेकिन हम लोग करते हैं नबी से मोहब्बत करते हैं मेरे दोस्तों, हाँ या नहीं, बात खत्म करो ना, करते हैं तो जन्नती, नहीं करता है तो ईमान ही नहीं, बोलो ईमान ही। आप इजाजत दो तो एक वाक्या सुनाओ, सुना दो ना, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में है, बोलो कहां पर है, देर तो नहीं हो रही, आप मोबाइल बार बार देखते, टेप कर रहे हो या देखते होंगे भाई बीवी का कहीं कोई मिस कॉल तो नहीं है, सुनाओ ना, आपको सुनाओ। अल्लाह के रसूल पाक सासम सफर में 1500 सहाबा, कितने 1000 सब सफर में, सुनना, सफर में एक बड़ा मैदान, ओपन ग्राउंड, बड़ा मैदान, सफर में जा रहे बहुत बड़ा मैदान आया, अल्लाह के रसूल पाक सासम ने कहा यही नमाज पढ़ेंगे यही खाना खाएंगे, सब लोग अपनी नमाज की तैयारी, वजू की तैयारी, खाने की तैयारी, 1500 सहाबा। अच्छा अल्लाह के रसूल पाक सासम खड़े हैं, एक सहाबी को हमारे नबी ने आवाज़ दी जिनका नाम है उसामा, बोलो क्या नाम है, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, उसामा इधर आओ। अब उसामा बिल्कुल जवान, इतने खुश हो गए कि 1500 सहाबा में अल्लाह के रसूल ने मुझको बुलाया, अरे बताओ खुशी होगी कि नहीं होगी, आज कोई बड़ा अल्लाह का वली आवे और पूरे मजमे में से बोले आप मेरे पास आ जाओ, आप तो बहुत बड़े, तो आदमी कितना खुश होगा, इतने बड़े अल्लाह के वली ने मुझे बुलाया। मेरे दोस्तों वली बुलावे तो खुश हो जावे, ये तो वो बुला रहे हैं जिनसे बड़ा कोई नबी नहीं, जिनके कदम को भी जिब्राइल चूमा करते थे,
وہ اللہ کے رسول، اسامہ ادھر آؤ ادھر آؤ، حضرت اسامہ اتنے خوش کہ او ہو اللہ کے رسول نے مجھے بلایا، کیا فرمایا؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آ گیا، بتاؤ کیا کیا خدمت، مجھے کیا خدمت کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے استنجا کرنے جانا ہے، مجھے استنجا، نے پیشاب مبارک،